इनायत उनकी बात तो सुन रही थी, लेकिन उसका दिल यही सोचते हुए धड़क रहा था कि रुखसती के बाद उसे रियाज के साथ उसके मेंशन में रहना होगा, यानी कि हेल मेंशन में। वो उस नर्क में नर्क के शैतान के साथ रहेगी। बस यही सोच काफी थी इनायत की घबराहट और बढ़ाने के लिए। अब तो उसने अपने दिल में ये निश्चित कर लिया था कि वो जिब्रान से बात करके यहाँ से निकलने का जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी। दाईजान अपनी जगह से खड़ी होती हैं और इनायत से कहती हैं, चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। दाईजान के जाने के बाद इनायत काफ़ी देर तक उनकी बातों को सोचती रही और फिर उठकर वो बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदले और जल्दी से वो आईने के सामने खड़ी हो गई। नीले रंग का कुर्ता उसके गोरे रंग पर उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था और आंखों में सुरमे ने तो उसकी खूबसूरती में चार चांद ही लगा दिए थे। अपने बालों की उसने एक ढीली सी चोटी बनाई थी जिसमें से कुछ लट उसके गालों पर आ गई थी। इतना ही काफ़ी था रियाज के घायल दिल पर खंजर चलाने के लिए। रियाज तो वैसे ही इनायत की अदाओं का घायल हो चुका था, लेकिन उसकी खूबसूरती उसे हर बार इनायत से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। इनायत खुद को शीशे में देख रही थी। ये उसका अक्स था, उसका चेहरा, जिसके लिए वो खुद को ही दोषी महसूस कर रही थी। इनायत की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने अपने मन में अपने खुदा को याद करते हुए कहा, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरी गलती तो नहीं है ना जो आपने मुझे ये रंग दिया, ये रूप दिया, ये नैन नक्श दिए। आपने मुझे ऐसा हुस्न दिया जो मेरे लिए मेरी जान का दुश्मन बन गया है। ये तो नहीं कहती कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन लड़की हूँ, लेकिन देखने वाले मुझ पर अक्सर अपनी नीयत खराब कर देते हैं। क्या इसकी वजह ये हुस्न है? ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए ये रूप, मुझे नहीं चाहिए ये रंग। मुझसे छीन लीजिए ये सब कुछ, मुझे दागदार कर दीजिए। ये खूबसूरती का तोहफा मेरे लिए ताउम्र की सज़ा है मेरे मौला। मुझे इस सज़ा से रिहाई दे दीजिए, मुझसे ये रंग रूप छीन लीजिए और मुझे एक आम सी जिंदगी जीने दीजिए। ये सोचते हुए इनायत की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसकी आंखें बंद हो गई थीं। अचानक से उसके सामने एक दृश्य आ जाता है और इनायत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनायत के अब्बू उन दोनों घर आए हुए थे। उन्हें अपने रिश्तेदार की एक शादी में जाना था, इसलिए इनायत को जिब्रान के घर पर छोड़कर वो लोग शादी में चले गए थे। लेकिन शाम के वक्त पर जिब्रान की अम्मी और अब्बू भी किसी काम से बाहर चले गए थे। घर में सिर्फ जिब्रान और इनायत ही थे। वो दोनों अपने कमरे में थे और इनायत लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। बहुत देर तक टीवी देखने के बाद उसने टीवी बंद कर दिया और किचन में चली गई। उसने सोचा कि शाम हो गई है, क्यों ना सबके लिए चाय बनाई जाए, और थोड़ी देर बाद जिब्रान के अम्मी और अब्बू भी वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो किचन में चाय बनाने के लिए गई, थोड़ी ही देर बाद उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है तो सामने याकूब खड़ा था। याकूब धीरे धीरे कदमों से इनायत की तरफ बढ़ रहा था और उसे अपने पास आता देख इनायत की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में डर उमड़ आया था और वो डरे हुए चेहरे के साथ याकूब को देख रही थी। याकूब इनायत के पास आता है। इनायत इस समय किचन प्लेटफॉर्म के पास खड़ी थी। याकूब ने आकर प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द अपना हाथ लगा दिया, जिससे इनायत उसके बाहों के घेरे में खड़ी हो गई। याकूब की निगाहों में इनायत के लिए गलत इरादे साफ नजर आ रहे थे। इनायत का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और उसके हाथों में कपकपी सी होने लगी थी। वो डरते हुए याकूब से कहती है, भाईजान ये क्या कर रहे हैं? लेकिन याकूब ने उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे इनायत के चेहरे की तरफ झुकने लगा। इनायत ये देखकर और डर जाती है, लेकिन उसके पास निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उसने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और याकूब को देखकर कहने लगी, भाईजान छोड़िए, मुझे जाने दीजिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। उसकी बात सुनकर याकूब हंसते हुए कहता है, चिल्लाओगी? ठीक है चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर, और अगर कोई आया भी तो वो तुम्हें ही गलत समझेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये हुस्न किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है, और इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी है जो तुम इतनी खूबसूरत हो। अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो मैं कभी तुम्हारी तरफ नहीं आता। अगर तुम चिल्लाई तो लोग आएंगे और तुम पर ही उंगलियां उठाएंगे और ये कहेंगे कि तुम अपना हुस्न का जादू चलाकर मर्दों को अपने जाल में फंसाती हो, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। याकूब फिर से एक बार शैतानों की तरह हंसते हुए इनायत के करीब आने लगता है, लेकिन इस बार इनायत ने उसके कंधे पर जोर से धक्का देते हुए उसे दूर धकेलती है और किचन से बाहर भाग जाती है। इनायत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन याकूब की शैतानों जैसी हंसी उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। इनायत उसके बाद एक मिनट भी वहां नहीं रुकती है, हालांकि वहां पर जिब्रान भी मौजूद था। वो चाहती तो जिब्रान के कमरे में जा सकती थी, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उसके घर की तरफ बढ़ गए थे। अपने घर में जाकर उसने अंदर से ताला लगा लिया था और सारी रात दरवाजे के पास बैठी रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दरवाजा खोलकर बाहर जाए।
अचानक से शीशे के सामने खड़ी इनायत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर सामने खुद को देखती हैं। अपने परछाई को देखते हुए इनायत रोते हुए खुद से ही सवाल करती है, क्या ये रूप मेरी गलती है? क्या ये रंग मेरी मर्जी थी? हर शख्स मुझे देखकर मुझे नोचने को आता है। क्या मुझे हक नहीं कि मैं एक सुकून की जिंदगी जी सकूं? या फिर मैं ये समझूं कि जब तक मैं मिट्टी में नहीं मिल जाऊंगी, ये दुनिया मुझे इसी तरीके से जीने लायक नहीं छोड़ेगी। इनायत अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी और खुद से ही शिकायत कर रही थी कि दरवाजे के बाहर से उसे फिर से दाईजान की आवाज आती है। इनायत, चलो बच्चे, सब लोग डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इनायत ने जल्दी से अपने आंसू पूछे और खुद को सही किया। उसने दुपट्टे का एक छोर उठाया और उसे अपने सर पर ओढ़ लिया। दरवाजा खोलकर इनायत बाहर आती है और दाईजान के साथ डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है, जहाँ पर पहले से ही सब लोग बैठे हुए थे। लेकिन वहाँ पर दो नए शख्स और थे। ये थे रियाज के चाचा और चाची। रियाज के चाचा सुलेमान मलिक सैयद और उसकी चाची आयना मलिक सैयद कल रात ही यहाँ आए थे। आयना चाची ने जब इनायत को देखा तो वो जल्दी से इनायत के पास जाती है, उसकी बलाई लेते हुए उसके माथे को चुमकर कहती है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दुल्हन है रियाज की।